समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। रोज की तरह ही अगले आधे घंटे में हम उन सारी खबरों का लेखा जोखा आपको देंगे जिनका आपसे है सरोकार। डेटलाइन में हम बात करेंगे पृथ्वी दिवस की और पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी की। राज्यों की परिक्रमा करेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के माध्यम से। आर्थिक जगत और खेल के मैदान पर भी रहेगी हमारी नजर। और आखिरी सेगमेंट में हम याद करेंगे उन हस्तियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल।
Good afternoon, Mudita. Hello and welcome to all our listeners who are tuned into us on Parikrama on 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is my co-host Mudita. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
राष्ट्र आज पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के हर रूप से लड़ने के देश के दृढ़ संकल्प को दोहराया।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स अपॉन सिविल सर्वेंट्स टू अलाइन एवरी एफर्ट विद द गोल ऑफ बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया।
पश्चिम बंगाल में पहले चरण और तमिलनाडु में एक ही चरण में कल होने वाले विधानसभा चुनावों की सभी तैयारियां पूरी।
BJP delegation asks Election Commission to take strict action against Congress President Mallikarjun Kharge over alleged derogatory remarks on Prime Minister Narendra Modi.
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2006 के मालेगांव विस्फोट मामले में चार आरोपियों को बरी किया, उनके खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया।
And in women's cricket, India to take on host South Africa in the third T20 international at Johannesburg tonight. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Mother Earth Day.
अभिषेक, महात्मा गांधी ने कहा था कि पृथ्वी के पास हमारी जरूरत के लिए पर्याप्त साधन हैं, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं।
Absolutely, and also Marley Matlin very famously said, "The earth does not belong to us; we belong to the earth." And today, of course, April 22nd is more than just a date on the calendar; it's a global reminder of the planet we call home.
बिल्कुल सही। 1970 में अपनी शुरुआत के बाद से अर्थ डे दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण आंदोलन बन गया है, जो एक छोटे से जमीनी प्रयास के तौर पर शुरू हुआ था, वो अब दुनिया भर में कार्रवाई के लिए एक पुकार बन चुका है।
एंड द मैसेज इज मोर अर्जेंट देन एवर। क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, दीज आर डिस्टेंट प्रॉब्लम्स एनी मोर, दे आर हैपनिंग राइट नाउ ऑल अराउंड अस।
लेकिन पृथ्वी दिवस जो है अभिषेक, केवल समस्याओं के बारे में नहीं है, ये शक्ति के बारे में है। वो शक्ति जो हम सबके पास है, जिससे हम बदलाव ला सकते हैं। और इस साल की थीम इसे पूरी तरह से बयान करती है। थीम है हमारी शक्ति, हमारा ग्रह। मुझे ये थीम बहुत पसंद है क्योंकि हमारा ध्यान हमारी ओर यानी व्यक्तियों और समुदायों की ओर मुड़ती है, जिसमें हर किसी की एक भूमिका है। यहां तक कि छोटे छोटे काम भी मायने रखते हैं, जैसे पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का प्रयोग कम करना।
एब्सोल्युटली, एंड थिंग्स लाइक रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट, कंजर्विंग वाटर, प्लांटिंग ट्रीज, और इवन जस्ट बीइंग मोर माइंडफुल अबाउट कंजम्पशन कैन ऐड अप टू अ बिग इंपैक्ट। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट एजुकेशन एंड अवेयरनेस। The more we understand what's happening to our planet, the better choices we can make.
तो एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए भी है कि आज आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जिससे धरती की मदद हो सके। शायद ये कोई बहुत ही आसान सा काम हो, जैसे कि बेवजह जल रही लाइटें या पानी के नल को बंद कर देना, या घर लौटते समय रास्ते में पड़ा कूड़ा देख करके उसको हटा देना, उसको उठा देना, या फिर कोई बड़ा काम शुरू करना जैसे कि पूरे समुदाय के साथ मिलकर सफाई करना या पेड़ लगाने का कोई अभियान चलाना। बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे स्तर पर ही होती है, लेकिन जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ये बदलाव बड़ा हो जाता है।
Absolutely, and that's right. Saving Mother Earth doesn't always need big actions. It starts with small habits like conserving resources in our daily lives. And there comes the idea of the three R's. First R is reduce. Second R is reuse. And the third R is recycle. Reduce waste whenever possible. Reuse items instead of throwing them away. And recycle materials like paper, plastic and glass properly.
इसके साथ ही एक पेड़ लगाना भी एक हरित भविष्य की ओर बढ़ाया गया कदम है। जरा सोचिए अगर हर कोई ऐसा करे तो इसका क्या असर होगा?
Yes, Mudita, and Mother Earth is calling out for help, and that call is loud and clear. Nature is under serious stress. Oceans are filling with plastic, becoming more acidic, and extreme heat, wildfires, and floods are affecting millions of lives across the world.
और ये केवल प्राकृतिक बदलावों की ही बात नहीं है, मानवीय गतिविधियां भी इस नुकसान की गति को तेज कर रही हैं। वनों की कटाई, जमीन के उपयोग में बदलाव, जलवायु परिवर्तन, गहन खेती, पशुधन उत्पादन और यहां तक कि वन्य जीवों का अवैध व्यापार भी पारिस्थितिकी तंत्र को विनाश के कगार पर धकेल रहा है।
And when ecosystems suffer, everything suffers because ecosystems support all life on earth, plants, animals and yes, us. Humans too.
बिल्कुल सही बात है अभिषेक, और हमारा ग्रह स्वस्थ होगा तभी उस पे रहने वाले यानी हम लोग स्वस्थ होंगे। इसलिए क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना अब कोई विकल्प नहीं रहा है, ये बहुत जरूरी है।
Absolutely, and it can help end poverty, slow down climate change, and even prevent mass extinction. But here's the key point: it cannot be done alone.
बिल्कुल सही, सरकारें, समुदाय, उद्योग और हम में से हर एक को इस समाधान का हिस्सा बनना पड़ेगा।
So, on this International Mother Earth Day, the message is simple. We need a shift towards a sustainable economy that works with nature, not against it.
एक ऐसा भविष्य जहां हम पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके साथ तालमेल को बढ़ावा दें, जहां प्रगति की कीमत हमारे ग्रह को न चुकानी पड़े।
And Prime Minister Narendra Modi has launched Ek Per Maa Ke Naam campaign. The essence of Ek Per Maa Ke Naam is a symbolic gesture, planting a tree in the name of one's mother. This simple act serves a dual purpose, honoring the role of mothers in nurturing life and contributing to the health of the planet.
और ये बात तो हमारे सभी श्रोता भी जानते हैं कि पेड़ जीवन का आधार हैं, और ठीक एक माँ की तरह ही वे अगली पीढ़ी को पोषण, सुरक्षा और एक बेहतर भविष्य प्रदान करते हैं। इस पहल के माध्यम से प्रतिभागी न केवल अपनी माँ के सम्मान में एक चिरस्थायी स्मृति का निर्माण करते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की अत्यंत आवश्यक जरूरत को भी पूरा करते हैं।
So to conclude our discussion on Earth Day, Mudita, if I were to come up with three slogans for Earth Day to inspire action and environmental awareness, they would be, number one, there's no planet B. Number two, invest in a planet. And number three, small steps, big impact. Because protecting Mother Earth begins with us. We do not inherit the Earth from our ancestors. We borrow it from our children. And moving on, today marks a deeply painful anniversary, a day that still echoes with sorrow in the hearts of many across the nation. It has been 1 year since the tragic terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir, an incident that took away 26 innocent lives, most of them tourists who had simply come seeking beauty, peace and moments of joy.
कई परिवार पल भर में बिखर गए, कई सपने अधूरे रह गए, और पहलगाम की शांत घाटियों ने उस दिन एक ऐसे दर्दनाक हादसे को देखा जिसने कई खिलखिलाती जिंदगियों में हमेशा के लिए अंधेरा भर दिया। जो पल हंसी खुशी और सैर सपाटे की यादें बननी चाहिए थे, वे दुख की यादों और ऐसे घाव में तब्दील हो गए जो वर्षों तक दिलों में छुपते रहेंगे।
And the entire nation stood still that day. Messages of shock and condemnation poured in not just from across India, but from leaders and communities around the world. And it was a reminder of how such acts of violence hurt not just individuals, but humanity as a whole.
और आज जब हम उन 26 जिंदगियों को याद करते हैं तो हमारा दिल दुख से भर उठता है। उस दिन जो हुआ उसकी याद आज भी हमें कचोटती है। उन परिवारों के लिए हमारा दिल करुणा से भर जाता है जो इस क्षति के साथ आज भी जीना जारी रखे हुए हैं, और पूरा देश उनके साथ एकजुटता से खड़ा है।
And may we hold on to the memories with dignity, and may peace find its way back into every corner that has known such pain. Let us pause for a moment to remember, to reflect, and to hope for a future where such tragedies never repeat.
भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए आतंकवाद फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। सेना ने साफ कहा है कि जब इंसानियत की हदें पार की जाती हैं तो उसका जवाब भी निर्णायक होता है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले साल 6 और 7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। एक रिपोर्ट।
Operation Sindoor was conceived as a punitive and targeted campaign to dismantle the terror infrastructure across the line of control and deeper inside Pakistan. Under it, the well-coordinated strikes carried out by the Indian Armed Forces precisely hit 9 terrorist camps in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, killing over 100 terrorists, their trainers, handlers and associates. Most of the terrorists belonged to organizations like Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba and Hizbul Mujahideen. The operation inflicted maximum damage on the terrorists and their hideouts and minimum harm to the civilian population. The operation demonstrated India's capacity for high-precision, coordinated military action across land, air and sea. The operation was made possible by years of investment in defense preparedness and the unwavering policy and budgetary support from the government. Operation Sindoor will be remembered as a defining moment in India's defense history, a symbol of military precision, inter-service cooperation and national resolve. It successfully eliminated terror threats, reaffirmed India's regional dominance, and sent a strong message that cross-border terrorism would be met with a calibrated yet firm response. With Anand Kumar, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
Operation Mahadev was also launched to wipe out the terrorists involved in the Pahalgam attack. The operation evolved into one of the most extensive counter-terror operations in recent years. And after relentless pursuit and a swift and precise engagement, all 3 terrorists were neutralized, bringing the perpetrators of the Pahalgam attack to justice on 28th of July last year. As part of a series, People's Padma on Akashvani, in our upcoming episode, we speak to Dr. Puniyamurthy Natesan, a noted veterinary pharmacologist. He will be honored with the prestigious Padma Shri.
India becoming an organic hub in food production is a reality. I've been working for the last 25 years on traditional Siddha-based ethno-veterinary medicine to counteract some of the issues affecting the livestock production in India. So this is an important and first step towards achieving One Health. So One Health is our motto. Indian traditional knowledge system on health is not only a robust system, but also can show the way for the entire world.
ये चर्चा आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आज शाम 5:10 पर प्रसारित होगी। इसे आकाशवाणी समाचार के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 पर भी किया जाएगा। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास जाने का और ये जानने का कि उनके पास क्या है खास। तो शुरुआत हम करते हैं चंडीगढ़ हरियाणा से, जहां आज पृथ्वी दिवस पर प्रदेशवासियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रकृति और पर्यावरण के प्रति मानव की जिम्मेदारी से अवगत करवाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने इस अवसर पर लोगों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं बल्कि समस्त जीव जगत का आधार है। वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण पर्यावरण असंतुलन एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर जल संरक्षण, वृक्षारोपण प्लास्टिक के उपयोग में कमी तथा स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
Yes, and Nepal's traditionally celebrated Mahalakshmi Jatra in Banepa of Kavre Palanchok has been observed by participation of thousands of devotees with great devotion and enthusiasm. The Jatra is celebrated with prayers for wealth, prosperity and shared well-being and concludes today. Let's hear more from a correspondent in Nepal.
Historic town of Banepa in Bagmati province comes alive during the Mahalakshmi Jatra when thousands of devotees gather to celebrate the vibrant Jatra. During the three-day festival that starts on Akshaya Tritiya, wooden chariots are built at Ugrachandi temple for carrying the statues of Mahalakshmi, Shiv and Ganesh. Carrying the idol of goddess Mahalakshmi, devotees pull the chariot across the town seeking blessings for prosperity and well-being. Youth play traditional Pancheba dancing to the music. All participants throw vermilion at each other, turning streets of Banepa town red. The festival reflects deep-rooted faith as generations come together to honor the goddess. Traditional music and cultural performances add to the festive spirit, preserving centuries-old heritage. With devotion, color, and effort to preserve century-old tradition, Mahalakshmi Jatra continues to reflect Nepal's cultural life and community bond. Shweta Singh for Parikrama, Kathmandu.
और अब बात एक बेहद खास पहल की जो बिहार के शेखपुरा जिले में ऑपरेशन स्वाभिमान के तहत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों और उनके बच्चों के जीवन को बेहतर बनाना है। आइए सुनते हैं सविता पारिख की रिपोर्ट।
बिहार के शेखपुरा जिले के विभिन्न प्रखंडों में चल रहे ईंट भट्टों पर अब केवल काम ही नहीं बल्कि पढ़ाई की भी आवाज सुनाई दे रही है। जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वाभिमान के तहत 53 चिन्हित ईंट भट्टों पर काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को मुख्य धारा में लाने के मकसद से अस्थायी कक्षाएं शुरू की गई हैं।
दस दस कितना होगा? बीस बीस कितना होगा? चालीस चालीस कितना होगा?
जिलाधिकारी शेखर आनंद बताते हैं कि पीढ़ियों से चले आ रहे अशिक्षा के चक्र को तोड़ने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। वे कहते हैं कि ईंट भट्टों पर रहने वाले सभी परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भी प्रयास किया जा रहा है।
ईंट भट्टों पे जनरली जो हम लोग का होता है अंत्योदय का जो आइडिया है कि समाज के सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ईंट भट्टों पे काम कर रहे हैं और एक बेसलाइन स्टडी करवाया गया है जिसमें ये पता चलता है कि वो जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है। इसी को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने प्रशासनिक तौर पे एक कदम उठाए और ये जो जनरेशनल एक साइकिल चल रहा है इसको हम लोग ब्रेक करेंगे।
इन कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षा सेवक राघु मांझी बताते हैं कि यहाँ कक्षा 8 तक के लगभग 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
बच्चा को पकड़ के पढ़िया से लाते हैं और पढ़ाते हैं 8 से 11। उसके बाद हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चा लोग अच्छे पढ़ रहे हैं।
श्रमिक बिंदिया देवी कहती हैं कि कार्यस्थल के पास ही कक्षा शुरू होने से वे बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य के लिए आश्वस्त हैं।
बच्चा पढ़ रहा है, दोपहर के टाइम में ठीक यहाँ रहता है, सेपरेटी बच्चा रहता है, पढ़ता है और सुबह में इटा पढ़ लेते हैं, दोपहर के बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं।
इस अस्थायी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र मुन्नू कुमार का कहना है कि सुबह 8 बजे से यहाँ रोज कक्षा संचालित होती है और वे यहाँ पढ़ने आते हैं।
यहाँ हमारे मम्मी पापा रहते हैं, यहाँ पर ईंट पढ़ते हैं और 8 बजे से लगभग सर आते हैं तो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं।
ईंट भट्टों की तपिश और चिमनी के धुएं के बीच शिक्षा की टूटी डोर को फिर से जोड़ने की ये पहल समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक नई उम्मीद जगाती है। परिक्रमा के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार के साथ मैं सविता पारीख।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलने के मौके पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद हैं। आगे का ब्यौरा हमारी संवाददाता साक्षी सिंह से।
कपाट साल खुलने के अवसर पर केदारनाथ धाम को भव्य रूप से सजाया गया है और पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल है। धाम में हजारों श्रद्धालु मौजूद हैं और पूरी केदार घाटी हर हर महादेव और जय शिव शंकर के जयकारों से गुंजायमान है। केदारनाथ सभा के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित उमेश चंद्र पोस्ती ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली है। यात्रा मार्ग और धाम में पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। वही श्रद्धालुओं को कहना है कि यात्रा मार्ग और धाम में प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट कल सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खुल चुके हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
और अब चलते हैं खेल के मैदान पर और जानते हैं वहां की हलचल।
एंड वी स्टार्ट अप विद क्रिकेट एंड इन आईपीएल क्रिकेट होस्ट्स लखनऊ सुपर जायंट्स विल फेस राजस्थान रॉयल्स दिस इवनिंग। द मैच विल स्टार्ट एट 7:30 PM। लास्ट नाइट होस्ट सनराइजर्स हैदराबाद डिफीटेड दिल्ली कैपिटल्स बाय 47 runs।
और साथ ही बात महिला क्रिकेट की, 5 मैचों की महिला T20 श्रृंखला के तीसरे मैच में आज रात जोहान्सबर्ग के वॉन्डरर्स स्टेडियम में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीकी टीम पहले 2 मैच जीतकर श्रृंखला अपने नाम करने के लिए उतरेगी, वहीं भारतीय टीम श्रृंखला में वापसी का प्रयास करेगी।
एंड मूविंग ऑन टू सम बिजनेस न्यूज, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स स्नैप्ड अ 3-day विनिंग स्ट्रीक फॉलिंग नियरली 1% टुडे, ड्रैग्ड बाय आईटी सेक्टर। द सेंसेक्स प्लंज्ड 757 पॉइंट्स टू क्लोज एट 78,516, व्हाइल द निफ्टी लॉस्ट 199 पॉइंट्स टू सेटल एट 24,378. However, in the broader market, the National Stock Exchange, the mid-cap 100 added 0.2%, while the small-cap 100 climbed over 1.1%.
और अब समय है उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का और साथ ही उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस।
22nd April is the death anniversary of freedom fighter Bishambhar Dayal, who died in 1931.
Bishambhar Dayal was born in Alwar district of Rajasthan in 1893. Right from his initial days, he was committed to the national cause, and that is why he didn't marry in his lifetime. At a young age of 19 years, Bishambhar entered into the revolutionary freedom movement to free the motherland from the shackles of British tyranny.
He was also involved in bombing Viceroy Hastings in Delhi in 1912. Because of this incident, Bishambhar came into the eyes of the British government.
Bishambhar became a member of the Revolutionary Socialist Party and came into contact with Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh. It was during this period Chandrasekhar Azad visited Bishambhar Dayal and learned bomb making and other activities from him.
He was planning to rescue Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, but before any plan could be implemented, Bishambhar was arrested. He was tried in the Delhi conspiracy case and sent to jail. In jail, he was tortured and he succumbed to his injuries on the 22nd of April 1931.
और इस कड़ी में हम आगे याद कर रहे हैं जाने माने वायलिन वादक लालगुड़ी जयरमन को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। सत्रह सितंबर 1930 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में उनका जन्म हुआ था और केवल 12 साल की उम्र में वायलिन वादक के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने वायलिन की एक नई शैली को जन्म दिया जिसे आज लालगुड़ी बानी के नाम से जाना जाता है। भारत में नहीं बल्कि विदेश तक उनकी कला की धूम रही और उनके करियर का एक बड़ा खास पल था जिसके साथ अभिषेक हमारा आकाशवाणी केंद्र भी जुड़ा हुआ है। 1979 में उनकी एक रिकॉर्डिंग को बगदाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद ने पूरे विश्व की 77 प्रविष्टियों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। और दिलचस्प बात यह है श्रोताओं की, ये रिकॉर्डिंग यहीं यानी दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र में की गई थी। इसके पहले 1965 में स्कॉटलैंड के एडिनबरा संगीत महोत्सव में जब उन्होंने वायलिन पर प्रस्तुति दी तो विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक यहूदी मेनुहेन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी वायलिन लालगुड़ी को उपहार में दे दी। उन्होंने अनगिनत नृत्य रचनाएं तैयार की। वे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत चार भाषाओं में संगीत रचना करते थे, जिससे उनका प्रभाव पूरे दक्षिण भारत में रहा। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2006 में फिल्म श्री नगरम के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 2013 में आज ही के दिन उनका निधन हो गया।
Yes, and we are also remembering Miguel de Cervantes, who passed on this day in 1916. He was a Spanish writer, widely regarded as the greatest writer in the Spanish language, and one of the world's preeminent novelists. He is best known for his two-part novel, Don Quixote, a work considered to be the first modern novel. Don Quixote has been labeled by many well-known authors as the best book of all time, and the best and the most central work in world literature.
और अभिषेक, हमने अभी बात की यहूदी मेनुहिन की, तो आज से 110 साल पहले एक ऐसे संगीतकार का जन्म हुआ जिसने अपने वायलिन के सुरों के साथ ही अपने उदार स्वभाव से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। यहूदी मेनुहिन, वो शख्स जिसने 11 साल की उम्र में अपनी पहली रिकॉर्डिंग की और तब तक वे ऑलरेडी एक स्टार बन चुके थे। उनकी कॉन्सर्ट फीस $10,000 तक थी। आलोचक उन्हें सदी का वायलिन वादक, वायलिनिस्ट ऑफ द सेंचुरी बताने लगे थे। युवा संगीतकारों को मार्गदर्शन देना जिनका मिशन था, उनका कहना था कि संगीत जन्मसिद्ध अधिकार है, उतना ही जितना हवा, पानी और भोजन। और उनकी एक बात जो बड़ी अच्छी लगी मुझे कि मैं चाहता हूं कि हर स्कूल में दिन की शुरुआत बच्चों के गाने और नाचने से हो। 1940 के दशक में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपना करियर लगभग रोक दिया और अस्पतालों और सैनिक मोर्चों के पास सैकड़ों संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बेल्सन यातना शिविर के मुक्त होने के तुरंत बाद वहां विस्थापित लोगों के लिए संगीत बजाया। 1952 में मेनुहिन ने भारत की यात्रा की। यहां उन्होंने BKS अयंगर से योग सीखा और तभी उनकी मुलाकात पंडित रविशंकर से हुई, जिनके साथ बाद में उन्होंने 3 एल्बम बनाए और 1968 में एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए ग्रैमी अवार्ड भी जीता। इसके पहले इन दो महान कलाकारों ने 1967 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी वेस्ट मीट्स ईस्ट कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 12 मार्च 1999 को उनका निधन हो गया।
Yes, and we are also remembering Shravan Kumar Rathore, who passed on this day in 2021. He was a legendary Indian music composer, best known as one half of the iconic duo Nadeem and Shravan. Together with his partner Nadeem Akhtar Saifi, he was a defining figure in Bollywood music throughout the 1990s and early 2000s, revitalizing the industry with melody-driven soundtracks. Let's listen into a song from one of his hit films.
नब्बे के दशक का जो सुरीला दौर था उसका काफी क्रेडिट अभिषेक इस जोड़ी को जाता है। और आज जयंती है उस शख्स की जिन्हें दूरदर्शन के इतिहास का सबसे कामयाब सीरियल बनाने का श्रेय हासिल है। कौन सा सीरियल था वो, आप इस टाइटल ट्रैक से समझ जाएंगे।
अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा।
Yes, Baldev Raj Chopra was born on this day in 1914. He was a prolific Indian director, producer, noted for pioneering the Hindi film industry and television series. He is known for directing notable films, and he was awarded the Dada Saab Phalke Award, India's highest award in cinema, for the year 1998, and Padma Bhushan, India's third highest civilian award, in 2001. And you just heard the title song of the serial Mahabharat, which he made. And also now we are remembering Glenn Travis Campbell, who was born on this day in 1936. He was an American country musician and actor. He is best known for a series of hit songs in the 1960s and 70s and for hosting the Glenn Campbell Good Time Hour on CBS television from 1969 until 1972. A revered session guitarist before breaking through as a solo performer, Campbell released 64 albums in a career that spanned 5 decades, selling over 45 million records worldwide, including 12 gold albums, 4 platinum albums and 1 double platinum album. Let's listen in to his hit track, Rhinestone Cowboy.
And nice guys get washed away like the snow and the rain.
अभिषेक, एक खास बात आपने देखी कि आज की हमारी ज्यादातर हस्तियां जो थी वो म्यूजिक की दुनिया से जुड़ी हुई
थी। एब्सोल्युटली इज अ म्यूजिकल शो टुडे।
यस। श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुदिता और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। साथ ही आप हमारी मोबाइल ऐप newsonair पर भी हमारे कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं।
नमस्कार।
नमस्कार।